مشکل الفاظ کی وضاحت، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2، الحیو، اس کا مادہ کیا ہے؟
ہا یا یا.
القیوم،
اس کا
قاف و میم قوم سے ہے. مصدقن، صاد القاف، شاباش. یدیہ، شاباش. التوراتا، تاورا. التوراتا ذنتقام، نون قاف میم نقمہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو برا سمجھنا، اس میں عیب دھرنا، کسی کو اس کے ناپسندیدہ کام پر غضبناک ہو کر سزا دینا یا بدلہ لینا. نقمہ، نقمہ کی ضد ہے، جیسے انتقام ہے نا، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ انعام. تو انتقام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انعام نہیں دیتے، سزا لیتے ہیں، اور انعام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. نقمہ، سورۃ البروج میں بھی یہ لفظ آتا ہے، وما نقمو، البروج. تو نون قاف میم، آپ اس کو اسی سے یاد رکھیں کہ ایک طرف انتقام ہے، نقمہ انتقام، اور دوسری طرف کیا ہے؟ انعام ہے. کبھی زبان کے ساتھ عیب لگانا، کسی سے انتقام کبھی زبان سے لیا جاتا ہے، کبھی اس کو سزا دے کے، تو مختلف طرح سے یہ انتقام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. ذنتقام. لا یخفا، خافا یا. لا یخفا، خافا یا، خفیہ. یصورکم، یصورکم صورت گری کرنا، شکل و صورت بنانا. اس کے تین درجے ہیں. پہلا ہوتا ہے مصوری، صورا، تصویر کھینچنا، شکل بنانا. یہ لفظ بالعموم جاندار چیزوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور جیسے جاندار چیزوں کی صورت بنانا، اور یہ اللہ کا کام ہے. دوسرا اس کا درجہ ہوتا ہے خلقا، جیسے مادے پر صورت کی تکمیل سے پہلے کے ابتدائی نقش و نگار. تیسرا ہوتا ہے تمثیل، اپنی شکل و صورت میں تبدیلی کر کے کسی دوسرے کی شکل و صورت کی مانند بنانا، جیسے ہوتا ہے نا تمثیل، مثال سے ہے. تو صورا، تصویر کھینچنا، آپ کہتی ہیں تصور میں ایسا ہے، آپ نے تصور میں ایک تصویر کھینچ لی، اور صور ویسے صحیح سے شکل بنانا، اور خلق مزید اس پر جیسے نقش و نگار کی ہے نا، تمثل، اپنی شکل و صورت میں تبدیلی کر کے کسی دوسرے کی شکل و صورت جیسی بنانا. ارحام، رحامیم، رحم سے ہے، اور یہ پیٹ کو بھی کہتے ہیں، اور ارحام اس کی جمع ہے، رحم بچے دانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. محکماتن، محکماتن واحد ہے، اور محکمات اس کی جمع ہے، ہا کاف میم، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے حکمت دابہ، جانور کو لگام دینا، اس کو کنٹرول کرنا. تو اس طرح یہ لفظ جو ہے وہ کنٹرول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے یہ لفظ جو ہے وہ پختگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا پختہ ہونا، محکم ہونا. ہننا، ہا واحد ہے اور ہننا اس کی جمع ہے. اخارو دوسرے کو کہتے ہیں، اگر خا کے نیچے زیر ہوتی تو آخری لاسٹ ون ہوتا، اور اخر یا اخرو سیکنڈ دوسرے کو کہتے ہیں. متشابہات، شین باہا شبہ، جیسے جس چیز میں جو ہے وہ شک ہو، شبہ ہو، تو اس وقت یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی سے جو ہے تشبیہ، جیسے کسی کو کسی سے ملا دیا جائے، تو شک و شبہ ڈالنا بھی شبہ بھی ہے. تشابہ، متشابہ، جو چیز جس سے ملتی جلتی ہوتی ہے نا، پھر اس میں ایک جو ہے وہ شبہ آنے لگتا ہے، متشابہ بھی چیز ہو جاتی ہے. زیغن، زے یا غین، زیغن، اس کے معنی ہوتے ہیں زیغن کے زنگ لگنا، اور یہ لفظ جو ہے زیغ کا ٹیڑھ کے لیے بھی آتا ہے، ٹیڑھا ہونا. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جیسے نظر کا تھک جانا، نظر جب تھک جاتی ہے تو ایک جگہ آپ کو مستقل نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح جو ہے وہ اگر دل کے اوپر سے آ دھبے سے بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دلوں کو جیسے زنگ لگ گیا نا، دل ٹیڑے ہو گئے. تو آگے آپ دیکھیے آیت نمبر 8 میں بھی یہی لفظ ہے، ربنا لا تزغ، تو اس کا روٹ بھی کیا ہے، زے یا غین، زیغ، یہی اس کا روٹ ہے. اور اس کے معنی کیا ہے کہ نظر کا تھکنا، نظریات میں ٹیڑھ کا ہونا. ایک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر نظر جو ہے وہ تھک کر ٹیڑھی ہو جائے، جس طرف آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے آپ اس طرف نہیں دیکھ پاتے، اور جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو جیسے نظریہ ہی چینج ہو گیا، عقیدہ چینج ہو گیا، تو ٹیڑھ کے لیے بھی، یہ مادی طور پر بھی حسی طور پر بھی دونوں طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تشابہ، یہ اس کا روٹ ہے، شین باہا، ابتغاء، بغاؤ بھی ہو سکتا ہے اور باغین یا بھی ہو سکتا ہے. فتن آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الفتنہ جو ہے فتن. تاویل ہی، یہ لفظ جو ہے یہ نیا ہے، تاویل ہی، اور اس کا روٹ ہے الف و لام، اول سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی غائط یا انجام کی طرف لوٹنا، لوٹانا، کسی بات کی حقیقت تک پہنچنا. اب جیسے آپ کہتی ہیں کہ یہ خواب تو ہے پر خواب کی تعبیر کیا ہے، تو خواب کی جیسے تعبیر جو ہے وہ کیا ہے، جیسے اس کا انجام. تعبیر بتانا، کسی چیز کے انجام تک پہنچنا، اس کی حد غائط کی طرف جو ہے وہ لوٹانا، تو اس طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے ابارہ، تعبیر، کسی وادی یا نہر کو پار کر جانا. اب خواب کی تعبیر بتانے والا کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچ رہا ہوتا ہے، دیکھی ہوئی چیز سے اندیکھے نتائج تک وہ پہنچتا ہے. اور تعویل دوسرا درجہ ہے، اولا پھر تعویل، کہ آپ اسی سے بات کے انجام تک پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے خواب کی یا میری بات کی تعبیر کیا ہے، تعویل کیا ہے. عربی میں تعویل کہہ لیں، اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں تعبیر کو، کہ یہ بھی ایک عربی لفظ ہے. اس کا تیسرا درجہ پھر فتویٰ ہے. فتویٰ میں کیا ہوتا ہے، کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلے کا حل پیش کیا جاتا ہے، جس کا اس پر فتویٰ بتائیں. والراسخون، راسین خا، اس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کے، مضبوط، مضبوطی کے لیے ایک لفظ تو ہے ثابت، ثابت قدمی، दूसरा है रसाखा, अपनी जगह पर गड़ जाना, किसी चीज का मोहकम होना। जैसे अगर स्याही जो है आपने अपनी कॉपी पे लिख रही हैं और वो उसके ऊपर लग गई है तो कहते हैं कि स्याही किताब पर जम गई, अल हिब्रू फिस सहीफा। इसी तरह रसख अल इल्मु फिल कल्ब, इल्म दिल में जम गया, बैठ गया। तो रासीन खा के अंदर एक केस के मानी होते हैं कि जैसे अपनी जगह पर बैठ जाना, और दूसरे इसके मानी के अंदर ये चीज भी पाई जाती है कि जैसे जो है वो किसी जगह पर बैठ, यानी कोई जगह होती है जिस पर जो है वो चीज मजबूती से जम जाए। तो दिल में एक चीज आ गई तो वहां पे दिल में बैठ गई जैसे। तो किसी चीज को बहुत दलायल के साथ हसबे जरूरत जाना कि उसका अजाला मुमकिन ना हो सके। रस्ख, आप उर्दू में भी कहती हैं कि फलां बात तो रासिख हुई हुई है, जैसे लिखी हुई है, गड़ी हुई है, जमी हुई है। तो रासिख के मानी क्या है? साबित होना, जम जाना, किसी चीज का जहां पे जमे ना वहां पे आके उसने जगह भी घेर ली है, जायगीर जगह भी घेर ली, इसमें भी इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और रासिखून तो गोया के पुख्ता है, पक्के हैं, फिर इल्मी इल्मे, जमे हुए हैं इल्म पर। आयत नंबर 11 में है कदाबी, इसका रूट है दाल हमजा बा दाब, इसके मानी है लगातार के। दाब के मानी क्या होते हैं? जैसे लगातार, जैसे किसी चीज का मसलसल जो है वो चलना, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तरीके के लिए भी। जैसे जो चीज मसलसल, एक चीज जब चल रही होती है तो जैसे उनका तरीका, या उस तरह भी फिर ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लगातार मसलसल। और अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगी कि जैसे किसी काम को मसलसल करते चले जाना बगैर वक्फे के, तब भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश और मुशक्कत से लगातार चलते जाना, तब भी जो है ये दाबा, दाए बैंड, सूरज और चांद दोनों के मसलसल चलने के लिए भी कुरान ने ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया है कि सूरज और चांद जो हैं ये मसलसल चल रहे हैं। तो उनकी हालत क्या है, सूरज और चांद का हाल क्या है कि मसलसल चल रहे हैं बगैर रुके हुए, तो वहां पे भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। मसलसल चल रहे हैं बगैर रुके हुए चल रहे हैं। अब यहां पे भी है कदा बे आले फिरौन, के आले फिरौन जो हैं उनका हाल, तो हाल का पता फिर कहां से चलता है कि आले फिरौन भी मुसलसल उनकी एक आदत हो गई, उनका एक तरीका, उनकी एक चाल ढाल। तो दाबा के मानी क्या है? मुसलसल चलते जाना। जैसे बात कहते हैं जानवर को भी कहते हैं कि वो चलते रहते हैं, तो असल बात क्या है? दाबा। फिर इसके बाद है शयातीन, दो ग्रोह, दो जमातें, और ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। जमात के लिए कुरान में 14 लफ्ज आए हैं और उनमें से जो है वो ये जो लफ्ज है फियातुन, इसका छठा दर्जा है, इसका रूट है फा अलिफिया। और अगर आप देखें अलिफ पर आप زبر دے دیں, فتحہ دے دیں تو فیاتن ہے نا, حمزہ حمزہ بن جائے گی نا, تو فا حمزہ تا فیاتن. ایسے جماعت کے لوگ جو تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹیں, ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں. تو فیاتن دو کو کہتے ہیں, آگے پھر واحد بھی ہے فیاتن. اچھا یہاں پہ التقاطا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کا روٹ ہے لام قافیا لقیا, اس کے معنی ہوتا ہے ملنا, اور التقاطان تھا نون تسنیہ کا گر چکا ہے, دو گروہ جو تھے نا التقان دونوں آپس میں ملے. رائے العین, عین آنکھ کو کہتے ہیں اور رایہ کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. یا عبرتن, عین بارا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں عین بارا کے لفظی معنی ہے عبور کرنا, اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنے کے لیے. تو عبور میں اصل میں عبور کا لفظ عربی زبان میں خاص کر پانی عبور کرنے پر استعمال ہوتا ہے, کہ تیر کر پانی کو عبور کر لیا جائے, جیسے کشتی ہے, اونٹ ہے, پل ہے, تو اس کے ذریعے ہی پانی عبور کیا جاتا ہے نا, جیسے نہر وغیرہ, تو اس وقت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. عبر العین, اب آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اس کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح جو ہے العبرت, عبرت میں کیا کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جب وہ واقعہ ہو گیا, کسی کو کوئی سزا مل گئی, خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو لوگ اسے عبرت کیسے حاصل کرتے ہیں کہ جو واقعہ ہو گیا اس کے نتائج پر غور کرتے ہوئے پھر وہ ایک بات تک پہنچتے ہیں کہ اسے عبرت حاصل کرنی ہے. جیسے عبور کیا, حسی طور پہ بھی مادی طور پہ بھی یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو اصل معنی ہے عبور کرنا, خواہ کوئی کشتی پہ بیٹھ کر یا جو ہے وہ پل کے ذریعے اس کو عبور کر لے سمندر کو, پانی کو, نہر کو, یا پانی کے اندر اتر کر تیر کر اس کو عبور کر لے. تو اصل معنی کیا ہے, عبور کرنا. زینا, یہ اس کا روٹ ہے زے یا نون, اور اس کے معنی ہے کہ کسی کو خوبصورت بنانا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خوبصورت کے لیے, بیوٹیفل کے لیے, کسی کو ظاہری طور پر بھی آراستہ کرنا, اور یا پھر یہ کہ اس کو باطنی طور پر آراستہ کرنا. اور یہ لوگ جو ہے نام بھی رکھتے ہیں, جیسے زینہ, زینت, زین, تو یہ جو سب نام ہیں یہ اسی میں سے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے وہ سجانا, ظاہری طور پر بھی, یا پھر آپ اسے کہہ سکتی ہیں کہ اس کو باطنی طور پر جو ہے وہ سجایا جائے. تو زے یا نون, مزین کرنا, زینت دینا. حب عربی زبان میں حبت اصل میں دانے کو کہتے ہیں, اسی سے یہ لفظ محبت کے لیے استعمال کیا جانے لگا. چاہنا, اشہواتی, اشہواتی, شین ہا وو, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں انسان کے طبیع تقاضوں کی خواہش. تو شہوات ان واحد ہے اور شہوات اس کی جمع ہے, ایسی خواہشیں جن کی طرف انسان کا نفس کھینچا چلا جاتا ہے, ایسی خواہش جو فطری طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہے, جیسے بھوک. اب مثلاً آپ سونا چاہتی ہیں, آپ کو جب بھوک لگی ہوئی ہے نا, تو یہ جو بھوک کی شہوت ہے نا, یہ آپ کو سونے تو نہیں دے گی, آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے. اب آپ سونا چاہ رہی ہیں, آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہے, پر پیاس لگی ہوئی ہے. تو ایسی خواہش جس کی طرف طبیعت خود بخود کھینچتی چلی جائے, بھوک, پیاس, اسی طرح جنسی خواہش, یہ بھی شہوت میں آتی ہے. تو یہ جو خواہش ہے انسان کی اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یعنی بھوک لگی ہوئی ہے, اب آپ نہیں جب ارادہ کریں گی تو کھائیں گی, جب بھوک لگی ہے آپ کو تو آپ چٹنی, اچار, روٹی, کچھ بھی ملتا ہے منہ کے اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں, کچھ بھی کام کر رہے ہیں, तो भूत इसी तरह नींद, आपका नींद में आपके इरादे का कोई दखल नहीं है। आप सो जब नींद का टाइम है आपका, जैसे जो लोग पाकिस्तान जाते हैं यहाँ का जो टाइमिंग होते हैं उसकी वो आदत होती है ना, जब वहां जाते खुद ब खुद आंखें बंद, आप यहाँ पर हैं तो खुद ब खुद आप आए और उस टाइम पे आंखें बंद, आप कितना भी क्या क्या हो रहा है तो कुछ दिनों में फिर आप दोबारा यहाँ पे उसके आते जाते। तो ये क्या है, ये शहवत कहते हैं इसको। तो वैसे ये कि चाहने के लिए, ख्वाहिश के लिए अरबी जबान में पांच लफ्ज हैं, अमल, उम्मीयतुन, हवा, शहवत और एक है वतर। तो पांच है, इसमें से अमल भी आप पढ़ चुकी हैं, हवा भी पढ़ चुकी हैं, उम्मीयतुन भी आप पढ़ चुकी हैं, और वतर, वा, तोए, रा, ये ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं जो जैसे जो मियां बीवी का ताल्लुक है, हम बिस्तरी उसकी शहवत के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी आपने पढ़ ली है पहले भी। निसाई, निसाई जो है ये औरतों को कहते हैं, और नून सीन या इसका रूट है, इमरातुन वाहिद है, और निसा इसकी जो है वो जमा है, और इस नाम पर एक सूरत भी है, सूरत अन्निसा, शाबाश। और फिर है वल बनीना, बनीना लफ्ज आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप ये पहले पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है, बा नून वाओ। और बनीन जो है ये उसको कहते हैं इस्म जिन्स को, तो वैसे तो बेटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इससे मुराद बेटी, बेटा, नवासी, नवासा, हर तरह की फिर औलाद के लिए, पोता, पोती, बनीन, औलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वल कनातीर, इसका रूट वर्ड चार हर्फी है, काफ नून तोए रा, कनातीर, और आगे जो लफ्ज है ना अल मुकंतराती, ये भी इसी में से है, और उसका रूट भी क्या है, काफ नून तोए रा, काफ नून तोए रा, इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहते हैं खजाने को, जैसे किंतार, किंतार का लफ्ज खजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर खजाने के लफ्ज पर आप गौर करें तो खजाने भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे खजाने होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सबके सामने नजर आते हैं। खजाने के लिए कुरान में चार लफ्ज हैं, एक खजाने के लिए कुरान में बल्कि तीन लफ्ज है, एक है किंतार, सोने चांदी या नकदी की एक भारी मकदार को किंतार कहते हैं, जिसकी जमा कनातीर है, किंतार वाहिद, कनातीर इसकी जमा, और कंज जिसकी जमा कुनूज है, ऐसे खजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों से छुपाया हुआ हो। अब वो आपने जमीन के अंदर उसको छुपाया, दफीना कर, दफन करके, या किसी बैंक में रखे, या घर में कहीं भी छुपाया हुआ, तो कंजुन ऐसे माल को कहते हैं जो छुपाया हुआ हो। सूरत कहफ में आप पढ़ेंगी ये वाला लफ्ज, व अमल जिदारु फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीनति फकान तहतहु कंजुल्लहुमा। तब जो उनका बाप था वो नेक था, तो उसका खजाना उसने क्या किया था, जमीन के अंदर जो था वो छुपाया हुआ था, यानी वो जो दीवार थी जो यतीम लड़कों की, उसके नीचे खजाना छुपा हुआ था, और अल्लाह ने उसको बड़ा अच्छा छुपा छोड़ा। नेक लोगों की अल्लाह बड़ी जो है उनकी नेकी की कदर करता है। और तीसरा लफ्ज है खजाने का, उर्दू में भी आप कसरत से इस्तेमाल करते हैं, खजीन वाहिद है और खजाइन इसकी जमा है, और खजीनातुन वो माल होता है जो जखीरा किया हुआ हो। खजन के अंदर दो बातें पाई जाती हैं, एक इकट्ठा करना, दूसरा हिफाजत भी। तो ऐसा खजाना जो इकट्ठा भी हो और फिर छुपाया हुआ भी हो। इसके बाद है ज़हब का लफ्ज़, ज़ाल हा बा, और ज़ाल हा बा ये धात को कहते हैं, धातों की मुख्तलिफ किस्में हैं, और इससे मुराद होता है सोना, इसकी जमा है अज़हाब, ज़हूब, ज़हबान, सोने के एक टुकड़े के लिए ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ज़ाल हा बा, ज़हबुन। दूसरा है सिद्दतिन, ये चांदी को कहते हैं, चांदी को कहते हैं, और चांदी की जो है वो जड़ाई के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब चांदी को जड़ा जाए तो उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये धातें जो थी उस जमाने में भी बड़ी अहमियत रखती थी और आज भी बड़ी अहमियत रखती हैं। और इसका रूट क्या है, फा द्वाद द्वाद, और लफ्जी मानी होता है किसी चीज को तोड़ना, रेजा रेजा करना। इसी तरह जो है वो फद्दा खत्मल किताब, तो जो तहरीर है उसकी मेहर को मोहर को तोड़ दिया। फिर इसी तरह इन फद्दल कौम, कौम जो है मुंतशिर हो गई, जब कोई चीज तोड़ी जाती है मुंतशिर हो जाती है ना। आप इसको पढ़ेंगी इस लफ्ज को, कुरान में और भी जगह पे आया है लफ्ज, लेकिन जैसे आप सूरत जुमा में भी पढ़ेंगी। और इसके अलावा आप इसको सूरत आल इमरान में भी पढ़ेंगी, जब गज़वा उहद पे तफ़सीरा पढ़ेंगी तब भी पढ़ेंगी। लनफद्दु मिन हौलिक, ये तेरे इर्द गिर्द से भाग खड़े हुए, मुंतशिर हो गए। अच्छा, चांदी जो है वो क्या, चांदी और मुंतशिर आपस में इनमें मुनासबत क्या है? क्योंकि चांदी जो थी उसका लेन देन होता था ना, कभी एक के हाथ में कभी दूसरे के हाथ में, तो हर वक्त कभी इधर है कभी उधर है, मुंतशिर है चांदी, वो जो जिसके जरिए लोग जो थे उस जमाने में लेन देन करते थे इधर उधर, तो एक ऐसी धात थी जिसका वो इस्तेमाल करते थे। खैल, खैल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है घोड़े के लिए। अच्छा, आप देखें कि अगर आप घोड़े के लफ्ज पर गौर करें तो अरब लोग जो थे उनके यहाँ बहुत से घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो खैल जो है ये इसमें जिन्स है। हर किस्म के घोड़े पर इसका इतलाक होता है, नर है या मादा। इसका इस्तेमाल घोड़ों के ग्रोह पर भी होता है, उसके गले पे भी होता है, और इसके अलावा जैसे जो घुड़सवार है ना उस पर भी इसका इस्तेमाल होता है। एक होता है ना घोड़े पर थोड़े घोड़े, ज्यादा घोड़े, एक घोड़ा, या घोड़े के ऊपर जो बैठा है घुड़सवार, उस पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और यहां पे फिर इसके माने क्या है कि ऐसे घोड़े जो बड़े चुने हुए घोड़े हैं। फिर है अल मुसब्बा माती, सीन वॉमीन, और इसके मानी होते हैं निशान लगाना, निशान जदा, सीधा घोड़े, कीमती घोड़े। वल अनाम, वल अनाम, नून आयन मीम, और नून आयन मीम जो है ये नेमत के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये लफ्ज जो है वो जानवरों के लिए, चुपायों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये लफ्ज भी, नेमत का लफ्ज भी इस्म जिन्स है, और ये वाह जमा मुख्तलिफ तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अलानाम से मुराद जो है वो चुपाए हैं, और सूरत अलानाम भी है, सूरत अलानाम। तो जब भी चुपायों की बात हो या अलानाम की बात हो तो अहले अरब जो हैं अनाम में इस्तेमाल करते थे। जैसे वैसे तो अरबों के लिए ऊंट जो था ना वो अनाम था, ज्यादातर इसका इस्तेमाल ऊंट पर होता है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल वो ऊंट के लिए करते थे। और लेकिन ये कि अनाम के लफ्ज में दरिंदे के अलावा बाकी जितने चौपाए हैं ना वो अनाम में जो है वो शामिल किए जाते हैं, अल अनाम। और अगर आप जैसे देखें तो अहले अरब जो थे चार जानवर इसमें खास तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसमें इसका इतलाक जो थे वो करते थे अल अनाम का, भेड़, भेड़ है, बकरी है, गाय है और ऊंट है, अल्लाह नाम। और वैसे तो देखें कि इसके अंदर वहूश वैशी जानवर वहाँ भी पाए जाते हैं, अनाम और फिर दवाब, दाबतुन वाहिद है और दवाब उसकी जमा है। और मैंने आपको बताया ना कि बाज़ लोग कहते हैं कि चूंकि जानवर भी जमीन पर चलता रहता है, मुसलसल एक ही काम है उसका, पेट पर चले, दो पाँव पे चले, चार पे चले, चलता रहता है, तो उसके लिए भी आता है और मुसलसल कोई काम करना उसके लिए भी आता है। फिर है हर्ष, हारा सा, तो यह पहले पढ़ चुके हैं। बीज बोने को भी कहते हैं, खेती को भी कहते हैं। हारिस जो है वो क्या होता है, किसान होता है। मता नीमता आयन, थोड़ी देर फायदा उठाना। पूरी दुनिया की जिंदगी भी क्या है, सारी जिंदगी भी कोई फायदा उठाए तो थोड़ा फायदा है। माआब, माआब का रूट है हमजा वोबा, इसके मानी है ठिकाने के। हमजा वोबा इसके मानी है ठिकाने के भी, और ये लफ्ज जो है वो लौटने के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है कि लौटना, क्योंकि इंसान हमेशा क्या करता है, अपने ठिकाने की तरफ जो है वो लौटता है, जो उसका ठिकाना होता है तो आखिरकार के इंसान जो है वो उसकी तरफ लौटता है। माआब, लौटने की जगह ठिकाने को कहते हैं। मुतहरत उनका रूप क्या है, तोहरा। और आयत नंबर 18 में किस्त लफ्ज अहम है, किस्त ये ज़विल अज़दाद में से है, ये अदल के लिए भी आता है और फिर शिर्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 20 है और इसमें हाजूगा का रूप क्या है, हाजीम जीम, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ हुज्जतबाजी, झगड़ा, लड़ाई, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वल उम्मीना, हमजा मीम मीम, उम। अच्छा, हमजा मीम मीम जब कहते हैं तो उम कहते हैं माँ को, फिर ये लफ्ज इमाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह किसी भी चीज की असल को भी कहते हैं, और जैसे अहले अरब जो थे वो अपने आप को कहते थे कि हमें सही अरबी आती है या इल्म आता है, बाकियों को वो क्या कहते थे कि बाकी जो है ना अनपढ़ है, बाकी लोगों को वो अनपढ़ कहते थे। तो माँ को कहते हैं ना, जैसे किसी का इल्म बस माँ की गोद तक है, कहीं वो मदरसे नहीं गया, कहीं तालीमी इदारे नहीं गया, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उम्मी है, अनपढ़ है। वल उम्मी यीना, तो इस तरह जो है आप इस लफ्ज को जो है वो समझ सकती हैं। असलम तुम सलम, सलामती भी है और फरमाबरदारी भी है, अतात भी है, इस्लाम भी इसी से है, मुस्लिम भी, अस्सलामु अलैकुम भी, सारे अल्फाज इससे मिलते हैं। फकत देह तदउ हादालिया बलाग, बालाम गैन बलागा, इसके मानी होते हैं कि पहुंचा देना, बालाम गैन, पहुंचना, पहुंचाना। और आम तौर पे जो है ये पहुंचना पहुंचाना, तो आम तौर पे क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मौके पे भी कहा था ना कि मैंने पैगाम जो है वो तुम तक पहुंचा दिया, तो बलागा। और अक्सर लोग अपनी तकरीर जब करते हैं उसके आखिर में भी इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो इबलाग, बाद लोग जो है इबलाग भी कहते हैं, जैसे सिर्फ जो है वो पहुंच, हाँ, जराए अबलाग वो भी इससे है, बलागा। तो कोई चीज या पैगाम जो है اس کو دوسرے تک پہنچا دینا. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ہاں وہ پہنچ جاتا ہے انسان, بلوغت بھی اسی سے ہے. انسان جو ہے وہ ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے جس کو پھر بالغ بھی کہتے ہیں, جب وہ بلاغت کے پاس پہنچتا ہے اس عمر کو پہنچتا ہے. بصیر با سوادرا, اور اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا. اور بالعباد, عین با دال روٹ ہے, عبد واحد ہے اور عباد اس کی جمع ہے. آیت نمبر 21 میں بالقسطی لفظ آیا ہے. قسط کی خاص بات کیا ہے؟ ذوی الاضداد میں سے ہے, عدل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ناانصافی کرنا. آیت نمبر 22 سورۃ آل عمران میں حبطت, ہا با تو حبط البعیر حبطا, نباتات کے کھانے سے اونٹ کا پیٹ پھول جانا. حبطا, حبوط کسی مویشی کا زہریلی گھاس چر کر پھول جانا. اب آپ دیکھیں کہ مویشی جب کھانا کھاتا ہے, چارہ کھاتا ہے, تو خوب موٹا تازہ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ زہریلی گھاس کھائے گا یا وہ جو بھی اس نے چارہ کھایا ہے وہ کھائے اور اس کے بعد اس کا پیٹ پھول جائے, تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. بالآخر وہ جانور, وہ مویشی برباد ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. ناصرین, ناصر واحد ہے, ناصرین اس کی جمع ہے, اور ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. نصیبن, نون سواد با نصب کرنا, اردو میں بھی آپ استعمال کرتی ہیں کہ پھر اس میں جھنڈا نصب کر دیا, اس زمین میں جھنڈا نصب کر دیا, گاڑ دیا. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں گاڑنا. قرآن میں گاڑنے کے لیے 7 لفظ آئے ہیں, اور نصب کرنا گاڑنا اس کا 5واں درجہ ہے. کسی چیز کو راستی میں گاڑنا, راستی میں گاڑنا. اور نصیب کے معنی ہوتے ہیں جیسے نشان کے طور پر راہ میں گاڑا ہوا پتھر, کسی سے وہ معین حصہ جو قسمت کا لکھا ہوا ہو, اچھا ہو یا برا. آپ کہتی ہیں کہ اس کے نصیب میں یہ تھا, تو گڑا ہوا, جمع ہوا, جو قسمت میں تھا بس وہی ہے. یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ برا بھی. تو نصیبن کا لفظ پھر استعمال ہوتا ہے حصے کے لیے, اور حصے کے لیے قرآن میں کتنے لفظ آئے ہیں؟ 7 لفظ آئے ہیں. آیت نمبر 23 میں لفظ ہے لیحکما, یحکما اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا. اس کا روٹ ہے ہا کاف میم. اس کے لفظی معنی ہے لغت میں منع عن الظلم, منع عن الظلم, ظلم سے منع کرنا, ایسا فیصلہ کرنا جس سے کسی کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے, زیادتی سے روک دیا جائے اور اس کا مداوا کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ہے وہ کھولنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے, جیسے قاضی. قاضی بڑا مشہور لفظ ہے. تو حکم میں اور قضاء میں کیا فرق ہے؟ قاف دعاد یا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام سے فارغ ہونا, اسے پورا کر لینا. آپ کہتی ہیں کہ قضاء حاجت, حاجت پوری کر لی, پھر اس نے قضاء حاجت کی. تو قاضی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا آخری فیصلہ دینا. قاضی کون ہوتا ہے؟ جو آخری فیصلہ دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ حکم میں بھی فیصلہ دینا ہے اور قاضی میں بھی فیصلہ دینا ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ قاضی کے پاس نا جو اس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے اس کو نفاذ کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے, جو فیصلہ دیتا ہے اس کو نافذ کر دیتا ہے, اور جو حکم ہے اس میں کیا ہے کہ ایسا فیصلہ جس سے کسی کو زیادتی سے روک دیا جائے یا اس کا مداوا کیا جائے. یتولا, वो लाम या इसके मानी होते हैं रुख फेरना। फरीकुन फारा का फरक, मोरेदून, मोरेदून इसका रूट है ऐन रा द्वाद, और वैसे ये लफ्ज आता है चुड़ाई के मानी में, चुड़ाई के मानी में अर्थ के लिए आता है। जैसे अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज की चुड़ाई के लिए ये लफ्ज जो है वो बोला जाता है। तो यहां पर है मोरेदून के वो इससे जो है वो फिरे हुए हैं। तो अब आप देखें कि एक चीज लंबाई के रुख पे है, एक चौड़ाई के रुख पर है। तो जब इंसान किसी के सामने खड़ा होता है तो उस अपनी जैसे अपना वो जो रुख है, अपना जो चेहरा, जब उसको मोड़ ले, अपनी चौड़ाई को मोड़ ले, तो क्या है कि उसने पहलू तय कर ली, वो मुड़ गया। मोरेदून। तमस्साना मीम सीन सीन मस, मस का मानी क्या होता है छूना, और लमस के मानी क्या होते हैं, हाँ उंगलियों से टटोलना, पोरों से, उंगलियों से। अयामन यौम वाहिद है, अयाम इसकी जमा है। मादूदातिन मादू आयन दाल दाल, अद्दा के मानी होते हैं गिनना, और मादूदातुन वाहिद है और मादूदातुन जमा है। अगर गोल तो आप लगा देंगी ना तो फिर क्या है गिनना, वाहिद है ये, मादूदातुन ये उसकी जमा है। तो मादूद के मानी क्या है, गिने हुए, गिनती के। वो अगर राहुम ये बड़ा अहम लफ्ज है और आपने इसको बड़ा पढ़ा भी हुआ है, आप उर्दू में भी बहुत कहती हैं कि वो तो बहुत गुरूर में था, मैं तो बड़ी गुरूर में थी, या फलां को गुरूर हो गया। तो इसका रूट है गैन रा रा, इसके मानी होते हैं किसी को गाफिल पाकर फरेब देना, धोखा देना, और एक होता है गरूर और एक होता है गुरूर, दोनों में फर्क है, समझ आ रही है, गरूर गुरूर, गैन पर फतहा के साथ और गैन पर दमा के साथ। आप जो गैन है ना इसको सर्कल करें कि जब गैन पर दमा होता है तो मानी होता है धोखा देना, गुरूर, और जब गैन पर फतह होता है तो मानी होता है धोखा देने वाला, ठीक है, धोखा देने वाला। जैसे गुरूर धोखा देना, जैसे दुनिया क्या है, मताउल गुरूर है, धोखा देती है ना, और शैतान कौन है, धोखा देने वाला, तो शैतान के लिए आप क्या कहेंगी, गरूर। और इंसान को जब जो है वो गरूर होता है, यानी वो धोखा खाता है ना, क्यों धोखा खाता है, वो समझता है कि जो उसकी खूबसूरती है, जहानत है, लंबा कद है, प्यारी आंखें हैं, या वो ज्यादा जल्दी लिखती है, या पहली दफा में उसने जो है वो लाइसेंस ले लिया है, तो वो इंसान धोखा खाता है, फ्रेब में होता है, वो ये समझता है कि ये सब मेरा करिश्मा है, ये मेरी सारी जहानत है, मेरा क्रेडिट है, हालांकि अल्लाह की देन है, अल्लाह किसी को देता है ना, तो ये चीज है। तो यहां पे भी वगर्रा हूं। यफ्तरून फाराया, इसके लफ्जी मानी है चमड़े को सीना और दुरुस्त करने के लिए उसे काटना। अब आप देखें कि जब चमड़ा है और चमड़े को जब सिया जा रहा है तो क्या करते हैं, साथ साथ कटाई भी करते हैं ना, कि दुरुस्त करने के लिए कि वो सही से हो जाए ना, तो कटाई भी की जाती है। यहीं से ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होने लगा खराब करने के लिए, कि चमड़े को सीना और दुरुस्त करने के लिए काटना। लेकिन अब जो है सीना और दुरुस्त करने के लिए काटने की बजाय उसे खराब करना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। और ये कब ऐसे इस्तेमाल होता है, जैसे इफ्तरा, इफ्तरा के मानी होते हैं, ये असल में बाबे इफ्तियाल में चला गया, यफ्तरून ये बाबे इफ्तियाल है, और इसके मानी है, वैसे तो आप देखें कि ये लफ्ज जो है अगर चमड़े को सीना है और दुरुस्त करने के लिए काटना तो मानी क्या है? इस्लाह। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये फसाद और खराब करने के मानी में भी इस्तेमाल होता है, तो इस तरह लफ्ज जो है इस्लाह और फसाद दोनों के लिए आता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल फसाद के लिए होता है। मुख्तलिफ अबवाब में जाकर भी मानी बदल जाते हैं। अच्छा, कुरान में ये लफ्ज झूठ, शिर्क, जुल्म इसके लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जैसे बीबी मरियम जो थी, जब उनके पास जो था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उनकी कौम ने उनसे कहा, लकद जेती शैयन फरिया, ये तुमने बड़ा बुरा काम किया, यानी तू कैसी चीज घर कर ले आई। वो बच्चा जो था, क्योंकि बिन बाप के था, तो उन्होंने फरिया का लफ्ज तब इस्तेमाल किया। तो बाज़ो कहते हैं अजीब बात, अजीम बात, मनगढ़ंत बनाई हुई बात के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर कोई अल्लाह के सिवा माबूद बनाए, किसी को कहे या किसी और जो है उसको इकरार करे, तो तब भी युफ्तरा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे अहले मक्का कहते थे कि ये नबी कहता है कि इसने कुरान जो है, यानी कहता है कि कुरान इस पर नाजिल हुआ, लेकिन वो क्या कहते थे कि कुरान इसने अपने दिल से बना लिया है, इसको घड़ लिया है, जैसे एक घड़ने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते थे। तरह तरह से ये लफ्ज कुरान में आया बड़ी कसरत के साथ, इसलिए आप इसको एक दफा अच्छे से समझ लें कि लुगत के एतबार से इसके लफ्जी मानी है चमड़े को सीना और दुरुस्त करने के लिए उसे काटना, और इफ्राउन अगर बाबे इफ़आल में आ जाए तो मानी खराब करने के लिए काटना, खराब करने के लिए काटना, और अगर बाबे इफ्तियाल में आए तो इस्लाह और फसाद दोनों मानों में आता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो फसाद के लिए आता है। अच्छा, अगर आप बाबे इफ़आल और बाबे इफ्तियाल ना भी समझ में आए, क्योंकि जब मैं कहूंगी नहीं समझ में, फिर समझ आ जाएगा, है ना। जब अगर कह दिया जाए कि तुमने ये काम नहीं करना, आपने इसको नहीं याद करना, तो अब आपने ये याद रखना है कि किसको याद नहीं करना, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। सही है, नहीं बात। तो मैं नहीं कह रही वैसे आप याद करें, अभी अबवाब जो है उनका कोई इम्तिहान नहीं है, ऐसे ही मैं ये अल्फाज बोलती रहती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। एक चीज जो है ना लुगत में आती है, जहन में आती है सुन सुनकर, फिर उसमें जो है वो इंसान और उसको समझना शुरू हो जाता है। तो यहां पे यफ्तरून घड़ने के मानी में। आयत नंबर 26 में लफ्ज है तंजेउ, तंजेउ नून ज़े ऐन। आपने ये कसरत से आप इसका इस्तेमाल करती हैं कि वो नज़ा के आलम में है। नून ज़े ऐन के मानी होते हैं खींचना, खींचने के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं और नज़ा जो है इसका 5वां दर्जा है। तो कहां से खींचना, किसी चीज को उसकी करारगाह से खींचना, जैसे जिस्म से रूह को खींचा जाए, तो कहते हैं ना वो नजा के आलम में है, इसका मतलब होता है कि अब उसकी रूह जो है वो जिस्म से खींचने का वक्त आ गया है। रूह आबाद करती है जिस्म को, और एक वक्त ऐसा आता है कि रूह जो है उसको खींचने का वक्त होता है। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, सूरत अल आराफ आयत 42। तो वहां पे क्या है कि हम उनके सीनों से कीने को खींच लेंगे, कि जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो एक जगह उनको रोक लिया जाएगा, जिनके दिलों में आपस में थोड़ी बहुत कदूरत थी ना, तो जन्नत में दाखिल होने से पहले उनके दिलों से वो कदूरत खींच दी जाएगी। गिल, इगलाल, जंजीरें होता है ना, कीना, कदूरत, नफरतें। बाज लोग इतने सख्त दिल के होते हैं, दूसरों की गलतियां माफ नहीं करते, अपनी गलती का एहसास नहीं करते, और अगर कोई माफी मांगे भी तो उसको माफ नहीं करते, और उसके साथ साथ जो है वो दूसरा कहे कि मैंने माफ भी कर दिया तो कहते हैं कि हमने तो नहीं माफ किया, है ना। इस तरह की मिसालें आपको दुनिया में मिलती हैं। तो अब दिल से ये जो कैफियत है, ये जो इतनी सख्त बुग्ध और नफरत और दुश्मनी की कैफियत, उसको गिल कहते हैं। तो कयामत के में जब जन्नत में लोग दाखिल होंगे, तो दाखिल होने से पहले जिनके बारे में जन्नत का फैसला हो जाएगा, अगर उनके दिलों में फिर भी थोड़ी बहुत कोई कुदूरत होगी तो उनके दिलों से निकाल दी जाएगी। तो ये जो खींचना है ना नून से आयन, ये इस्तेमाल होता है मादी तौर पर भी हिस्सी तौर पर भी। जैसे अब दिल के अंदर कीना कुदूरत नजर तो नहीं आ रही ना, है ना, तो नजा वन नाजियाती गर्कवा, डूब कर फिर वो रूह को खींचते हैं। वन नाजियाती और कसम है डूब कर खींचने वालों की, जब वो डूब कर खींचते हैं तो फरिश्ते सख्ती से जो है ना वो काफिरों की रूह को खींचते हैं। वन नाशितवाती नश्ता, नूनशीन तोए का मतलब होता है खोल देना, जैसे किसी ढक्कन को किसी बंधन को आराम से खोल दिया जाए, तो जो नेक और मुत्तकी लोग होते हैं उनकी रूह बड़ी आराम से निकाली जाती है, खींची नहीं जाती। वहां पे ये ओपोजिट लफ्ज इस्तेमाल हुए, नाजियात वन नाजियाती गर्कवा वन नाशितवाती नश्ता, आपस में ओपोजिट लफ्ज है। तंजे समझ आ गया, आवाज नहीं आई, समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद है तुइजु तो दिलु, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आइन जे जे इज्जत के लिए आता है और जाल लाम लाम जिल्लत के लिए आता है। तूलजु वो लाम जीम वला जा, इसके मानी होते हैं किसी तंग जगह में दाखिल होना। देखें कुरान मजीद को पढ़ना समझना कितना जरूरी है। अब दखला ये भी अरबी लफ्ज है, आम इस्तेमाल होता है दाखिल होना। आप कमरे में दाखिल हुई, आप एलिवेटर में दाखिल हुई, आम लफ्ज है। लेकिन जब वला जा आएगा ना तो इसके मानी क्या है कि जहां आप दाखिल कोई हो रहा है तो तंग जगह है, किसी तंग जगह में दाखिल होना, मुश्किल से दाखिल होना, घुसना। जैसे सूरत अल आराफ की आयत 39 में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो गुनाहगार हैं, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक के ऊंट सुई के नाके में दाखिल ना हो जाए। अब ऊंट जो है सुई के नाके में दाखिल हो सकता है? नहीं दाखिल हो सकता ना, नामुमकिनात में से है ना, नामुमकिन बात है। तो ये मुहावरा है कि ऊंट का सुई के नाके में दाखिल होना, इसी तरह अल्लाह के नाफरमानों का जन्नत में दाखिल होना है। तो अब वहां पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसे ऊंट को अगर सुई के नाके में डाला जाए तो वो घुस ही नहीं सकता, वह मुश्किल आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन घुस नहीं सकता। तो वला जा, तंग जगह में दाखिल करना। फिर आयत 28 में दूनी, दाल व नून दून, ये लफ्ज जो है ये जवील अजदाद में से है, पहले भी आप पढ़ चुकी है ना, और इसके मानी होते हैं पस्ती के भी शराफत के भी। वैसे आम तौर पर इसका तर्जमा सवाए का किया जाता है लेकिन इसके लुगवी मानी है पस्ती के, वे आगे पीछे, आगे भी और पीछे भी, शराफत के लिए भी और फिर जिल्लत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दूना। आयत नंबर 28 में है तुकातन, तो ये तो आपको आता है, इसका रूट क्या है? वो काफिया, डरा ना करें बोला करें, वो काफिया। तो वकिया का मतलब होता है बचना। तुकातन, तुकातन ये इस्म है यहाँ पे और मानी है बचने के लिए। तत्ताकू का रूट क्या है? वो काफिया। तो इंसान गुनाहों से बचता है, क्यों बचता है? अल्लाह की, अल्लाह के डर से, जहन्नुम में ना चला जाए। तो असल में लुगवी मानी तो बचना ही है ना, फिर ये लफ्ज तकवा के लिए इस्तेमाल होने लगा। एक इस्तलाह है, तकवा क्या है? कि आप बचते हैं गलती करने से, बचना दूर रहना, इस तरह भी इस्तेमाल किया। वयुहज़्ज़िरुकुम हा ज़ाल रा, इसके मानी है हा जाल रा के किसी खौफ ज़दा करने वाली चीज से बचना या दूर रहना। अब किस चीज से बच रहे हैं? बाज़ुकात कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, कोई वो खौफ ज़दा भी नहीं है, आप दूर दूर हैं, लेकिन किसी खौफ ज़दा करने वाली चीज से बचना, दूर रहना, किसी खतरे से होशियार रहना। और ये जो होता है ना हा जाल रा, ये जो खतरा है जिसे दूर रहा जा रहा है, बचा जा रहा है, कभी ये यकीनी होता है, कभी ये जन्नी होता है। कभी होता है कि यकीनी जो है ना ये खतरा है, और कभी क्या होता है गुमान होता है कि कहीं ये चीज जो है ना खतरनाक ना हो जाए, दोनों शक्लों में इसका इस्तेमाल होता है। तहम एहतियात, उससे एहतियात के लिए आता है। मसलन आप देखें अगर कहीं बिजली का तार है तो क्या है, ये नुकसान देने वाली चीज है ना, खौफ सजा करने वाली चीज है, तो और अगर वो हो नंगा तो आप क्या करते हैं, यकीनी है कि आप उससे अपने आप को बचाएं, तो इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे ट्रांसमीटर है पूरा बिजली का वो है, तो उससे इंसान दूर रहता है। बिजली का तार कहीं ऊपर से नंगा गिर गया है तो आप बच कर जाते हैं, क्योंकि गुमान भी हो सकता है और यकीन भी हो सकता है। इसी तरह एक्सीडेंट का हो जाना कि गाड़ी अगर बिल्कुल साथ साथ जुड़ जाए तो क्या है कि उससे बचो, अपने आप को बचाओ। तो इस तरह किसी खौफजदा करने वाली चीज से बचना, दूर रहना। तुखफू, तुबदूहू, तुखफू का रूट क्या है, खाफा या छुपाना। तुबदूहू का रूट क्या है, बादलवाओ, जाहिर करना। फिर है असमावाती, सीमी वाओ, अल अर्द, हमजा राद्वाद। शेन का रूट क्या है, शीन या हमजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तजेदू का वाओ, जीम दाल। मोहदरा, हा द्वाद रा, शाबाश, हा द्वाद रा, और इसके मानी होते हैं हाजिर, मौजूद। तो मोहदरा जो चीज हाजिर की हुई है। सू यही रूट है, सीन वो हमजा बुराई के लिए आता है। तवद्दू वो दाल दाल। अमादन जो है ना ये एक खास लफ्ज है, हमजा मीम दाल, ये मुद्दत दराज के लिए इस्तेमाल होता है। मुद्दत, जैसे कोई चीज की मुद्दत है तो मुद्दत की इंतहा कितनी है, गायत। ये फासले के मानी में भी आता है, ये जर्फ के तौर पर भी आता है और मकान के तौर पर भी आता है। अच्छा, मकान की शक्ल में ये फासले का मानी देता है, और यहाँ पे ये अमादन जो है ये मकान की शक्ल में आया है और यहाँ पे ये फासले के मानी दे रहा है, दूरी, फासला। वईद, बा ऐन दाल, वईद दूरी के लिए आता है, दूर। तो अमदन फासला, वईदन दूर का, अमदन मुसाफत, वईदन दूर की। तो यहां पे अमदन लफ्ज मुद्दत जमाने के लिए नहीं है, बल्कि क्योंकि ये मकान की सूरत में है ना, तो जैसे मकान के लिहाज से दूरी, जगह के लिहाज से दूरी, अमदन वईदा दूर का फासला हो। वयुहज़्ज़िरुकुम हाज़ाल रा, खौफज़दा करने वाली चीज से बचना, दूर रहना, खतरे से होशियार रहना। रऊफ़ुन, रा हमज़ा फ़ा, किसी की तकलीफ देकर दिल भराना, दिक्कत तारी होना, इस तकलीफ को दूर करने की फिक्र, दामनगीर होना। फत्तबिऊनी, आयत नंबर 31 में फत्तबिऊनी है, आयत नंबर 32 में अतीउ है। तो अतीउ जो है ना, तोए वो ऐन तौन, चाहते ना चाहते अतात करना। लेकिन फत्ता बेउनी जो ताबा ऐन है ना, उसका मतलब है मोहब्बत से, शौक से, फुटप्रिंट पर चलना, किसी को फॉलो करना। और तब यहां पे आयत 32 में तवल्लो तो आप पढ़ी चुकी है ना, वो लाम या, और फिरने के लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं। तो वल्ला, तवल्ला इसका 7वां दर्जा है। इसका मतलब होता है एराज करना, मुंह फेरना, उल्टा फिरना, दूर होना। वल्ला दुबुर, पीठ देकर फिर जाना, जैसे होता है ना कि कोई दुम दबा कर भागे, तो पीठ देकर फिरा, भाग गया। मुख्तलिफ तरीके से ये लफ्ज कुरान में इस्तेमाल होता है।